माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
आज हम लोग प्रयास करेंगे दामोदर लीला प्रारंभ करने का, इसलिए स्मरण करते हैं उस लीला का।
यशोदया गाध मुलुख लेना यशोदया गाध मुलुख लेना यशोदया कंठ पाशे ननी बध्यमानं गोकंठ गोकंठ पाशे ननी बध्यमानं गोकंठ रुरोदमंडं नवनीत भोजी रुरोद रुरोदमंडं नवनीत भोजी रुरोद गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरीषद् श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरीषद् श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे वैष्णवों के तीन महत्वपूर्ण गुणों पर, निस्वार्थ भावना का अर्थ क्या है और निस्वार्थ भावना होने से हमें क्या फल मिलता है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। किस प्रकार हम लोग अपनी इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, द्वेष भावना से मुक्ति पा सकते हैं, भय से मुक्ति पा सकते हैं, अपने अंदर एक कृतज्ञता का भाव ला सकते हैं, अर्थात ये जान सकते हैं कि ये सारी संपत्ति कृष्ण की है और हम लोग केवल इसके लिए रक्षा कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण और गुरु के कृपा को समझने का प्रयास कर सकते हैं। नम्रता का अर्थ है हम अपने हृदय में राधा और कृष्ण को, कृष्ण के प्रेम या माधुर्य को आने का स्थान दें, वैष्णव आचार्य द्वारा दी गई संपदा को पहचानें, शास्त्रों की आराधना व ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दूसरों की प्रगति को देखकर प्रसन्न हों और उनकी विफलताओं पर दुख प्रकट करें। साथ ही साथ व्यक्ति को, खास करके भक्त को, निर्भय भी होना चाहिए। निर्भयता ये समर्पण का एक महत्वपूर्ण अंग है। निर्भयता ये एक निस्वार्थ और नम्र व्यक्ति में ही आ सकती है, और निर्भय भक्त सत्य का रक्षण करने में सक्षम होता है, दृढ़ता से आचार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और वो एक ऐसा योद्धा है जो ऐसी युद्ध भूमि में लड़ता है जो सूक्ष्म युद्ध भूमि है, चेतना की युद्ध भूमि, और उसमें करुणा, सत्य और प्रेम के शस्त्रों से वो युद्ध करता है और अपने सारे कार्य गुरु, साधु व शास्त्र के आधार पर करता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये सारे गुण अपने अंदर लाना ये असंभव है, जब तक हम अपने बल पर इसको पाने का प्रयास करते हैं। इसलिए निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, हम लोगों को अपने बल के ऊपर जो भरोसा है उसको छोड़ देना चाहिए और तब जाकर हम लोग ये गुण अपने अंदर ला सकेंगे। अभी की स्थिति में हम सब अपने ही शत्रु हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम लोग अपने सारे प्रयासों के द्वारा आत्मा को भगवान से दूर रख रहे हैं। हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा आत्मा भगवान से दूर रह रही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अहंकारी है तो फिर वो भगवान के पास नहीं जा पाता, तो ऐसा व्यक्ति अपना ही शत्रु है। इसीलिए नम्रता, निस्वार्थ भावना और निर्भयता हृदय में आनी चाहिए। और ये कैसे आ सकती है? हमें भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी से बड़ी तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए। इन प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है और इन प्रार्थनाओं के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं और फिर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, और फिर जब उनकी कृपा हमें मिल जाती है तो हम अपने शत्रु नहीं रह जाते। साथ ही साथ हम अपने आप को जो कुछ भी समझते हैं उसे त्यागना होता है। अर्थात अगर हम अपने आप को पुरुष समझते हैं, हम अपने आप को बहुत महान योद्धा समझते हैं, हम अपने आप को बहुत नियंत्रक समझते हैं या बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, तो हमें इस सब को त्यागना होता है। और जब हम इस सब को त्याग देते हैं तब हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और तब हम बड़े आसानी से गुरु के हाथ की कठपुतली बन सकते हैं। कठपुतली आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं, आजकल तो वो होता नहीं है। पहले हर गली में ये हुआ करता था, एक व्यक्ति पीछे से पर्दे के पीछे रहता था और उंगलियां घुमाता था, उंगलियों में तार बंदी होती थी जो तार दिखाई नहीं देती थी, और फिर ऐसा प्रतीत होता था देखने वालों को कि मानो वो लकड़ी की जो गुड़िया है या लकड़ी का जो खिलौना है वो नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, बोल रहा है। तो इसी प्रकार हम सबको भी एक कठपुतली बनना चाहिए। हो सकता है कि बाहरी दृष्टि से प्रतीत हो कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे कार्य निर्देशित होने चाहिए गुरु के द्वारा। तो गुरु के हाथों में हमें कठपुतली बनना चाहिए। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, भगवान ने बताया अर्जुन को कि हे अर्जुन, निमित्त मात्रम, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। अपने आप की शक्ति पर, अपने बल पर कोई कार्य मत करो, और ना हम कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति को यह अहंकार हो जाता है कि ये जो कार्य है ये मैं ही कर सकता हूं, अगर मैंने ये कार्य छोड़ दिया तो फिर ये कोई कार्य नहीं कर सकता। और ये अहंकार हमें उस कार्य से आसक्त कर देता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे बिना कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए हम ही इस कार्य को करें। लेकिन हमें यह मानना है कि हमें केवल गुरु के हाथ की कठपुतली बनना है। भक्ति की शुरुआत की अवस्था में व्यक्ति को गुरुदास बनना होता है, हम कृष्णदास नहीं बन सकते, हमें केवल गुरुदास बनना होता है। और जो व्यक्ति अपने सारी स्वतंत्रता को त्याग कर, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर, कहना चाहिए कि एक दृष्टि में अपने अस्तित्व को ही त्याग देता है। अस्तित्व को त्यागने का अर्थ क्या है? हम जो हैं उसे त्यागना, क्योंकि हम इसी को अपना अस्तित्व मानते हैं। हम मानते हैं कि हम भारतीय हैं, हम एक वैष्णव हैं, हम एक भक्त हैं, हम एक किसी समाज के व्यक्ति हैं। ये सारे हमारे अस्तित्वों को हम बना लेते हैं, लेकिन इस सारे अस्तित्व को त्याग कर केवल एक अस्तित्व व्यक्ति को रखना चाहिए, और वो कि हम गुरु के दास हैं, और केवल इसके द्वारा ही वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो इसलिए ऐसे कार्यों को हम लोगों को करने का प्रयास करना चाहिए। इस जगत में दो ही सत्य हैं, और वो है जीव और भगवान का नाम। जीव सत्य है क्योंकि सत चित और आनंद है उसका स्वभाव, और भगवान का नाम क्योंकि भगवान से भिन्न नहीं है इसीलिए वो भी सत्य है। भगवान सत्य है, भगवान का नाम भी वैसे ही सत्य है। तो इस जगत में क्योंकि इस समय में हमारे पास, हमारे समक्ष भगवान नहीं है जैसा कि लोग मानते हैं, लेकिन अपने नाम के रूप में ही भगवान प्रकट हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण ने इस कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है। तो इसीलिए भगवान का नाम और जीव, ये दो चीजें सत्य हैं, और फिर इनको पाने के मार्ग या अन्य चीजें ये दूसरी स्थिति में आती हैं, लेकिन यही दो सत्य हैं, और बाकी सब जो कुछ भी है इस जगत में वो असत्य है, सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, रहने वाला नहीं है। इस बात को हमको बड़े ध्यान से समझ लेना चाहिए। और अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या उस पुष्प को पाना चाहते हैं जो भक्ति के रस का पुष्प है, तो हमें उसकी शुरुआत नाम से करनी होती है। शास्त्र बतलाते हैं कि अगर रस पुष्प, भक्ति के रस को एक पुष्प माना जाए, तो उसकी कली ये हरि नाम है, ये पवित्र नाम है, और इस कली के खिलते ही भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर इनके दर्शन होते हैं, इनका साक्षात्कार होता है, और भगवान के 64 गुण इस खिलते हुए पुष्प की सुगंध हैं। कैसे सुगंध हैं? जब व्यक्ति हरि नाम लेने लगता है, धीरे धीरे उसे साक्षात्कार होने लगता है भगवान के रूप का, और फिर भगवान के गुणों का। अर्थात पहले तो जो कली थी वो धीरे धीरे गुणों के रूप में पुष्प बन रहा है, और फिर वो गुण सुगंध के रूप में व्यक्ति उसको अनुभव कर रहा है। फिर भगवान के गुण अनुभव होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वो ग्रंथ में लिखे रह जाते हैं कि रूप गोस्वामी ने बतलाए हैं 64 गुण, बस वो ग्रंथ में है। नहीं, व्यक्ति उनको अनुभव कर सकता है कि भगवान का जैसे एक गुण है, भगवान बड़े कृपालु हैं, दया करते हैं, इसको अनुभव कर सकता है व्यक्ति। केवल देखने की, केवल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अनुभव भी करने चाहिए। तो इसीलिए ये जो 64 गुण भगवान के हैं वो इस पुष्प की सुगंध हैं, और जब पुष्प पूर्ण रूप से खिल जाता है तो भगवान की शाश्वत लीलाओं को प्रकट करता है। इस पुष्प को समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि ये रस का पुष्प है, भक्ति के रस, शुद्ध रस का पुष्प है, जिसका आस्वादन हमें करना है, लेकिन इसकी कली हरि नाम है। अर्थात जब तक हरि नाम नहीं होगा, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक हम भगवान के रूप भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। ये धीरे धीरे प्रगति होती है। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले भगवान के नाम में रुचि जागृत करनी होती है। भगवान को उनके नाम से अभिन्न मानने के साधना क्रम अर्थात क्रम है कि किस प्रकार से हम लोग कार्य करें। हमने सोचा था कि इस पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे समय होता तो, लेकिन आज समय नहीं है। फिर भी संक्षेप में इस पर चर्चा करके फिर इसके बाद दामोदर लीला प्रारंभ करेंगे। हम लोगों को नाम अपराध का परित्याग करना होता है और भगवान नाम का सतत उच्चारण करना होता है। जब तक हृदय में नाम अपराध हैं, तब तक हम भगवान को उनके नाम से अभिन्न नहीं समझ सकते। इसीलिए नाम अपराध को त्यागने का बड़ी कड़ाई से प्रयास करना चाहिए। हम लोग तो केवल प्रयास कर सकते हैं, कृपा या फल वो भगवान देते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये बड़ा तीव्र होना चाहिए। तो इसीलिए नाम अपराध का परित्याग और सतत भगवान नाम का उच्चारण, ये दो चीजें हमें प्रयास के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी होता नहीं है। सतत भगवान नाम का उच्चारण बहुत कम हो पाता है। हम लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, भगवान के नाम को भूल जाते हैं, या फिर नाम अपराध, बहुत सारे नाम अपराध करते हैं हम लोग। 10 नाम अपराध हैं और इन 10 नाम अपराधों की जननी या इसका जनक है ध्यान पूर्वक जप ना करना, जिससे सारे अपराध उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग तो ध्यान पूर्वक जप करते ही नहीं हैं और ये सबके लिए सत्य है, ठीक है ना। यहां पर कोई है जो कहते हैं मैं एकदम ध्यान पूर्वक जप करता हूं? आप गलत कह रहे हैं। कोई हो तो हम माफी चाहते हैं उनसे, लेकिन जहां तक हमें सूचना है, इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों का ध्यान पूर्वक जप होता नहीं है। तो इसीलिए ये जप ध्यान पूर्वक करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। उसके लिए नाम का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए और दिव्य ध्वनि पर ध्यान रहना चाहिए। और जब जब हमारा स्थिर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, आनंददायी होता है, तब हम बड़ी आसानी से श्याम सुंदर के रूप पर ध्यान कर सकते हैं। हम बहुत थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को, इन चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब स्थिर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और आनंददायी होना चाहिए। एक बोझा नहीं होना चाहिए कि बैठकर 16 माला जप करना है नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा या जो भी कार्य, नहीं। ये हमारे लिए आनंद देने वाला होना चाहिए। हमें पूरे दिन इसका इंतजार करना चाहिए कि कब वो घड़ी आएगी जब हम सबके साथ बैठकर केवल भगवान नाम का उच्चारण 2 घंटे तक करेंगे, 16 माला जप करेंगे। ये हमारी चेतना होनी चाहिए, दिन भर हमें तैयारी करनी चाहिए। दरअसल 24 घंटों में से केवल 2 घंटे हम लोग जप करते हैं भगवान के नाम का एक साथ बैठकर, बाकी के 22 घंटे हमें तैयारी करनी चाहिए उन 2 घंटों के लिए। और कैसी तैयारी? हमें बार बार उसका स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमें वो 2 घंटे बड़े ध्यान से बैठकर जप करना है। ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे जप में बाधाएं नहीं लाएं, और फिर ये जप बड़ा आनंदमयी होगा, फिर आनंद देगा। और जब तक जप स्थिर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, आनंद नहीं देगा, तब तक हम भगवान के रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो इसका और एक उपाय है कि हमें विग्रह के समक्ष भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यह भी एक विधि है। और एक और विधि, मंत्र ध्यानमयी उपासना। मंत्र ध्यानमयी उपासना का अर्थ होता है कि हम जप करते समय भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, लेकिन ये आगे की अवस्था है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि शुरुआत की अवस्था में केवल हमें सुनना चाहिए जो हम बोल रहे हैं, बस। धीरे धीरे हमारा मन पूर्ण रूप से इस नाम पर लगेगा और फिर हम आगे की अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह भक्ति में अगर हम विरोधी स्थितियों में भी हैं, अर्थात ऐसी स्थितियां हैं जो हमें भक्ति करने के लिए बाधाएं हैं, अगर उन स्थितियों में भी हम निश्चल रहें। निश्चल का अर्थ क्या है? हमारे हृदय में कोई छल नहीं हो। गलतियां हो सकती हैं, प्रयास विफल हो सकते हैं, लेकिन छल नहीं होना चाहिए। जहां छल होता है मन में, वहां कृष्ण नहीं आते। लेकिन जहां मन निश्चल होता है, अगर उस व्यक्ति से कोई गलतियां भी हो जाएं, कोई ऐसा कार्य भी हो जाए जो बहुत घृणित है, जो पापमय है, तो भी कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भक्ति में लगा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन उससे अगर कोई बुरा कार्य हो भी जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए। साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु मानिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग जप करें और जाकर पाप करें और फिर कहें भगवान ने कहा है साधुरेव समन्तव्य, नहीं, वो तो सातवां नाम अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा हृदय निश्चल होना चाहिए, हृदय में छल नहीं होना चाहिए। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि भक्तों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन द्वेष नहीं होना चाहिए। इसी तरह भक्ति करते करते हम गलतियां कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बड़ी अच्छी तरह से ठीक से ही भक्ति करेंगे, हो सकता है, लेकिन छल नहीं होना चाहिए, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी काफी समय भक्ति मार्ग में रहने पर यह छल हृदय में आ जाता है, व्यक्ति छल करने लगता है। पहले वो सोचता है कि हम अपने निकट वालों को छल कर रहे हैं, हम अपनी अथॉरिटी को छल कर रहे हैं, हम समाज को छल रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे भगवान को छल रहे हैं। वो ऐसा उसको प्रतीत होता है कि जैसे भगवान को जानते ही नहीं है। तो देखिए, छल करने की भावना हमारी चेतना को नीचे गिरा देती है। हमारी चेतना होना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन छल करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ये सोचने लगता है कि बाकी सब भगवान को पता है, लेकिन मैं जो छुप कर कर रहा हूं वो भगवान को नहीं पता है। तो इसलिए निश्चल भाव से अगर हम भक्ति करेंगे तो फिर सही ज्ञान को कृष्ण हृदय में प्रकट कराएंगे। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथितम हि अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। जो ऐसे महात्मा होते हैं जो छल नहीं करते, प्रयास करते हैं। महात्मा कौन है? अलग अलग स्थानों पर प्रभुपाद अलग अलग परिभाषा देते हैं कि महात्मा कौन है। एक स्थान पर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करता है वो महात्मा है, वो गोस्वामी है, नहीं तो गोदास है, और अन्य स्थानों पर भी। लेकिन एक स्थान पर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर व्यक्ति भक्ति में लगा है, शुरुआत की है, प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, वो भी महात्मा है। वो भजन कर रहा है भगवान का, भजन में लगा है, भक्ति में लगा है, केवल उसकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, लेकिन वो भक्ति में लगा है। हृदय कैसा भी अशुद्ध हो, भौतिक इच्छाएं भी हो, लेकिन अगर भक्ति में लगा है, निश्चल है उसका हृदय, तो वो महात्मा है। क्यों महात्मा है? क्योंकि आज नहीं तो कल बहुत ही जल्द वो भक्त बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान बताते हैं कि क्षिप्रम, बहुत जल्दी वो बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अपने हृदय को निश्चल रखना होता है और फिर भगवान ऐसे ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकट कराते हैं। तो तृणावर्त लीला का, वध का लीला का सारांश हम लोग देखेंगे। तृणावर्त मिथ्या अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर हम तृणवत, तृणावत का वध किया भगवान ने, तो अगर हम तृणवत बनेंगे, तृणवत का अर्थ क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो अगर हम तृणवत बनेंगे तो कृष्ण इस असुर का वध करेंगे। विवादों से बचने के लिए हमें कृष्ण नाम का उच्चारण करना होता है और नाम के द्वारा हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये तृणावत वध की लीला का सारांश है। तो ऐसा काफी समय बीत गया, तृणावत का वध हुआ, भगवान थोड़े बड़े हो गए और बहुत सारी लीला करते रहे। सारी लीलाओं का वर्णन तो सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया है, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी वो लीलाएं करते रहे, माता यशोदा को आनंद देते रहे, कभी माता यशोदा के को तंग करते, कभी अगर माता यशोदा उनको मुख खोलने को कहती तो मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा देते, माता यशोदा भ्रमित हो जाती। और न केवल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर कृष्ण और कृष्ण का हाथ पकड़े हुए यशोदा, कितना भ्रमित कर देने वाला ये दृश्य होगा। आप सोचिए, आप अपने बालक का मुख खोलें और बालक के मुख में आपको ब्रह्मांड दिखाई दें, ऐसे तैरते हुए ब्रह्मांड, और फिर अचानक एक ब्रह्मांड में आप देखें आप खुद बैठे हुए हैं और आपने अपने बालक का हाथ पकड़ा हुआ है। यशोदा माता तो सोचने लगी, ये क्या है, कौन से ग्रह का प्रभाव है, कृष्ण को क्या हुआ है, और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भगवान है, ये सारे ब्रह्मांडों का मालिक है। तो जैसे ही ये भाव आया यशोदा के हृदय में, कृष्ण ने तुरंत फिर से योग माया का पर्दा डाल दिया। अरे अरे अरे, ऐसा मत सोचो मैं भगवान हूं, मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूं, मैं तो केवल तुम्हारा छोटा सा बालक हूं। और फिर इस तरह से कृष्ण लीलाएं करते रहे। फिर करीब जब 3 वर्ष के वो हो गए थे, तो 3 वर्ष कुछ महीने के थे, तो दीपावली के दिन, जिस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है, तो उस दिवस पर भगवान ने एक बड़ी ही सुंदर लीला की। बताया जाता है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण लीला है, सुखदेव गोस्वामी ने भी बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। हम लोग प्रयास करेंगे, आज इसको प्रारंभ करेंगे, और फिर इस लीला से हम क्या सीखते हैं, ये कौन सा अनर्थ इसके द्वारा हम अपने हृदय में पाते हैं, और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। नारद मुनि के बड़े सुंदर उपदेश हैं इस विषय में, तो आज हम लोग इस दामोदर लीला को प्रारंभ करेंगे कि जब भगवान ने ये बड़ी ही सुंदर दामोदर लीला की। तो 3 वर्ष अर्थात जन्माष्टमी पर 3 वर्ष पूरे हुए, और उसके बाद 2-3 महीने में दीपावली आ जाती है, तो कुछ ही महीने हुए थे तीसरा जन्म दिवस मनाकर, भगवान का आविर्भाव दिवस होकर, तो भगवान ने ये दामोदर लीला की। दरअसल जिस दिन ये दामोदर लीला हुई उस दिन सभी लोग बड़े व्यस्त थे और बहुत सारे लोग भी वहां पर थे। ये लीला वास्तव में ऐसे अनर्थ को प्रस्तुत करती है जो ऐश्वर्य के कारण हमारे हृदय में एक अभिमान या दंभ को प्रकट कर देता है। ऊंचा जन्म तथा ऐश्वर्य, इससे उत्पन्न गर्व या दंभ का प्रतिनिधित्व करती है। और साथ ही साथ ये लीला ऐसे लोगों की विषम स्थिति का वर्णन करती है जो धनवान तथा सभ्य तो हैं परंतु स्वेच्छाचारी बन जाते हैं। तो इसका वर्णन हम लोग लीला के बाद करेंगे कि कैसे ऐसे लोग स्वेच्छाचारी बन जाते हैं। तो जैसे हम लोग वर्णन कर रहे थे कि ये बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे, और उनमें से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भगवान की भक्त वहां पर उस समय इस लीला के समय उपस्थित थी, और उनका नाम था कुंती महारानी। कुंती महारानी उस दिन वहीं पर थी जिस दिन ये लीला हुई, और इसीलिए कुंती महारानी आगे चलकर कृष्ण को उस लीला का स्मरण कराती हैं इस सुंदर श्लोक के द्वारा। तो आइए इस श्लोक को हम लोग पाठ करेंगे। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् या ते दशाश्रुकलिला जनसंभ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद्विभेति कुंती महारानी बड़ा सुंदर वर्णन कर रही हैं कृष्ण का। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, किंतु आप भयभीत थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो वर्णन कर रही हैं सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति, कि बड़ा भ्रम में डाल देने वाली आपकी लीलाएं हैं। मैं स्वयं देख रही थी कि किस प्रकार आपने अपराध किया और फिर अपराध करने के कारण यशोदा ने आपको किस प्रकार से बांधने के लिए रस्सी उठाई। तो ये बड़ी सुंदर लीला है। जब परीक्षित महाराज इन लीलाओं को सुन रहे थे भगवान, इससे पहले जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण कर रहे हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न आया। जब उन्होंने ये सुना कि किस प्रकार किस प्रकार सारे ब्रह्मांड अपने मुख में दिखलाए, किस प्रकार भगवान ने और अन्य लीलाएं की, किस प्रकार माखन चोरी की लीला भगवान किया करते, और किस प्रकार बहुत ज़्यादा शिकायतें आया करती, तो परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछने लगे। परीक्षित महाराज के मन में ये आया कि अरे, यशोदा कितनी भाग्यवान है। वो भगवान जो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो भगवान यशोदा के साथ में यहाँ पर रह रहे हैं, खेल रहे हैं, एक बालक की भांति उसका उसके साथ में है। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, नंद किम करोत् ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम् हरिः। पूछने लगे कि सुखदेव गोस्वामी से कि हे ब्राह्मण, ये बतलाइए कि आप इतना वर्णन कर रहे हैं, लेकिन यशोदा ने ऐसा क्या किया था, नंद महाराज ने ऐसा क्या किया था जो कृष्ण उनके साथ उनके बालक बनकर ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। और वो कहने लगे कि उनके जो असली माता पिता हैं, अर्थात देवकी और वसुदेव, जिनके गर्भ से, देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए हैं, उन्होंने भी ये लीलाएं नहीं देखी हैं, ना ही वो देखेंगे, क्योंकि वो तो वहां पर हैं और जब तक भगवान वहां जाएंगे बड़े हो जाएंगे। तो कहने लगे कि उन्होंने भी, उनको भी आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां देखिए यशोदा और नंद बाबा को ये आनंद मिल रहा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था कि लीलाएं कितना आनंद दे रही हैं, इसको वो बतला रहे थे। और साथ ही साथ वो ये भी कहना चाह रहे थे कि आप रुकिएगा मत, आप बोलते रहिएगा, क्योंकि जो आनंद यशोदा और नंद महाराज को उन लीलाओं में भाग लेने से मिल रहा था, वही आनंद केवल उन लीलाओं का श्रवण करने से मुझे मिल रहा है। तो एक दृष्टि से ये श्रुति फल भी देते हैं परीक्षित महाराज स्वयं। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन लीलाओं को सुनता है उसे वही आनंद प्राप्त होगा जो आनंद यशोदा और नंद महाराज को हो रहा था। जैसे वो लीलाओं को देख रहे थे, अगर हम बड़े ध्यान से इन लीलाओं का केवल श्रवण करें तो अपने कानों के द्वारा इन लीलाओं को देख सकते हैं और वही दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये इन लीलाओं की शक्ति है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव गोस्वामी। और फिर उस समय उन्होंने इस बड़ी सुंदर लीला का वर्णन प्रारंभ किया। तो बताने लगे एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। एकदा एक बार वो कहने लगे कि यशोदा ने सोचा कि आज मैं स्वयं दही का मंथन करूंगी। निर्मंथम स्वयं दधि, स्वयं दधि मतलब आज से पहले उन्होंने दही का मंथन नहीं किया था, क्योंकि यशोदा ये तो रानी थी और बहुत सारी दास दासियां थी, वो ये कार्य किया करती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से यशोदा ये बहुत सारी शिकायतें सुन रही थी कृष्ण के बारे में कि वो जाते हैं और माखन चुरा लेते हैं। तो यशोदा ने पद्मगंधा गायें, ये सर्वश्रेष्ठ गायें होती हैं, तो पद्मगंधा गायों को गोवर्धन की घास खिलाई। हम लोग गोवर्धन की घास का वर्णन एक समय कर चुके हैं कि गोवर्धन की घास कैसी होती है, पोषण देती है, सुगंधित होती है। तो गोवर्धन की घास खिलाई और यशोदा ने सोचा कि स्वयं इनका मैं दूध निकालूंगी और फिर उससे दही बनाकर स्वयं मंथन करके फिर मैं ये माखन अपने कान्हा को खिलाऊंगी। क्यों ये भाव आया उनके मन में? क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद जो भी माखन ये दास दासियों के द्वारा निकल रहा है उसमें कुछ वात्सल्य भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है शायद, तो इसीलिए आज मैं स्वयं, इसीलिए यहां पर वर्णन कर रहे निर्ममंथम स्वयं दधि कि आज मैं स्वयं दही मंथन करूंगी। तो फिर उसने अपनी जो दासियां थी उनको अलग अलग कार्य दे दिए। यहां पर बताया गया है कि उन्होंने कहा उस समय उत्सव का दिन था और वैसे ये समय था ब्रह्म मुहूर्त का, मंगल आरती का समय था, सुबह सुबह उठ गई थी और अभी कृष्ण सो रहे थे, कृष्ण उठे नहीं थे। तो फिर उन्होंने दही मथना प्रारंभ किया यशोदा ने, और बड़ा सुंदर वर्णन यशोदा का किया गया है। प्रभुपाद समझाते हैं कि जिस भी व्यक्ति को भगवान से वात्सल्य भाव में प्रेम करना हो उसे यशोदा का इस यशोदा के इस वर्णन को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यशोदा का वर्णन करते हैं कि कैसे थी यशोदा। अभी हमने वर्णन किया कि सुबह सुबह वो दही मंथन कर रही हैं, अपनी सारी जो दासियां थी उनको दूसरे काम दे दिए, उन्होंने कहा कि आज तुम ये काम मत करो, बहुत सारे और कार्य हैं, जैसे दिवाली पर बहुत सारे मिठाइयां बनानी होती हैं, सजाना होता है, तो तुम वो सब कार्य करो लेकिन दही मथने का कार्य आज मैं करूंगी। तो एकदा आज एक के दिन उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यशोदा देवी का वर्णन कर रहे हैं, वो कहते हैं यशोदा देवी ने केसरिया पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, अपने कमर में उन्होंने करधनी बांधी हुई थी और काफी परिश्रम हो रहा था उनको मथनी खींचने में। आचार्य समझाते हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत समय से ये किया नहीं था इसीलिए परिश्रम हो रहा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बड़े भाव से कर रही थी, बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी कि कहीं कृष्ण उठ नहीं जाए और ये कार्य रुक नहीं जाए, इसीलिए भी उनसे ये परिश्रम हो रहा था। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिलडुल रहे थे। ये बड़ा ही सुंदर वर्णन है, क्योंकि स्वाभाविक है जब दोनों हाथ ऐसे दही मथ रहे हैं तो चूड़ियां हिल रही थी। आचार्य अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि चूड़ियां दरअसल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग ये स्मरण रखिएगा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं चिन्मय जगत का, आध्यात्मिक जगत के। आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चिन्मय है, वहां का पत्थर भी चिन्मय है, वहां की प्रत्येक वस्तु चिन्मय है। इस चीज को स्मरण रख के इस लीला का श्रवण कीजिए। वैसे हमारे दृष्टि से, हमारे अनुभव से हर चीज चिन्मय नहीं होती है, हम पत्थर को, लकड़ी को चिन्मय नहीं मानते क्योंकि ये चिन्मय नहीं है, ये जीवित नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर चीज जीवित है, हर चीज चिन्मय है, हर चीज के भाव हैं। तो इसलिए आचार्यों ने उस दृष्टि को रखते हुए, अपने आप को आध्यात्मिक जगत में रखते हुए इन लीलाओं पर टिप्पणी की है। तो आचार्य समझाते हैं कि जब चूड़ियां, यहां पर वर्णन है कि उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिलडुल रहे थे, तो चूड़ियां ये सोच रही थी कि हम कितनी भाग्यशाली हैं जो हम यशोदा जैसी महान भक्त के हाथ में हैं। तो इसीलिए वो करताल जैसे बजती है ना, करताल, कर में जो ताल हैं, तो कर में पड़ी हुई चूड़ियां ये ताल कर रही थीं, ये बज रही थीं, ये कीर्तन कर रही थीं कि हम कितनी भाग्यवान हैं कि हमें यशोदा के हाथों में स्थान मिला है। क्यों यशोदा के हाथ से, हाथ में स्थान मिलने से भाग्यवान हैं? क्योंकि कितनी व्यस्त है यशोदा, सुबह सुबह उठकर स्वयं उसने दूध, पद्मगंधा गायों से दूध निकाला है और फिर अभी उसी दूध का उसने दही बनाकर अब वो मंथन कर रही है। तो इस तरह से बड़े भाग्यवान मान रही थी, तो वो गान कर रही थी, भगवान के नाम का उच्चारण कर रही थी, और फिर कान के कुंडल वो भी हिल रहे थे। तो जहां भी कीर्तन होता है वहां नृत्य भी होता है, तो चूड़ियां कीर्तन कर रही थी और कान के कुंडल नृत्य कर रहे थे कीर्तन में। तो इस तरह से बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा था और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। इतना वात्सल्य प्रेम था कृष्ण के प्रति कि उनके स्तनों से दूध बह रहा था। और एक दृष्टि से देखें तो आचार्य ये समझाते हैं कि दरअसल जो उनके स्तन के दूध थे वो ये सोच रहे थे कि आज तक तो कृष्ण ने केवल हमें ही पिया है, लेकिन ये आज यशोदा जो कार्य कर रही है, स्वयं अपने हाथ से माखन निकाल रही है, तो ये तो बड़ा स्वादिष्ट होगा, ये तो अमृत है, और फिर कृष्ण इसको अगर खा लेंगे तो फिर उनका पेट भर जाएगा, और अगर उनका पेट भर गया तो हमारा क्या होगा, हमें कैसे पिएंगे वो। तो फिर जो स्तन के दूध हैं वो बाहर आकर यशोदा को ये स्मरण करा रहे थे कि यशोदा माता हम हैं ना, ये माखन निकालने की क्या जरूरत है, क्यों निकाल रहे हो माखन, कृष्ण तो हमें पी लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से वो बाहर आकर यशोदा माता को ये स्मरण करा रहे थे कि हम हैं, आप ये माखन मत निकालिए। और इसीलिए उनका शरीर हिल रहा था क्योंकि भयभीत भी थे, उनके भय के कारण हिल रहा था, वो भयभीत थे कि कहीं ये कृष्ण ने दूध पीना छोड़ दिया, स्तनपान नहीं किया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो जीवन बेकार है। एक भक्त के लिए भाव होता है कि अगर कृष्ण की सेवा में हमारा जीवन नहीं लगा तो जीवन व्यर्थ है। तो इस तरह से वो बाहर आ रहे थे, उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थीं और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। तो देखिए उनके मुख पर पूरा पसीना आ गया था, इतना श्रम कर रही थी वो। किस लिए? ऐसा नहीं था कि उनके घर में और माखन नहीं था, बहुत माखन था, लेकिन केवल कृष्ण को स्वयं माखन निकाल कर देने के लिए वो इतना श्रम कर रही थीं। और उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तो फूल ये सोच रहे थे कि यशोदा इतनी महान भक्त हैं, इनके सर पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमें इनके चरणों में स्थान लेना चाहिए। तो वो गिर कर उनके चरणों में जा रहे थे। दूसरा वो ये भी सोच रहे थे कि यशोदा इतना श्रम कर रही हैं, इनके मुख पे पसीना आ गया है, अगर हम इनके सर पर रहेंगे तो बोझ बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा बोझ कम करने के लिए फूल नीचे गिर रहे थे। तो इस तरह से सभी लोग इस लीला में लगे हुए थे। फिर आगे वो वर्णन करते हैं, ताम स्तन्य काम आसाध्य मथंतिम जननीम हरि ग्रहित्वा दधि मंथानाम न्यषेध प्रीतिमा वहन। जब यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण वैसे उस समय दूसरे कमरे में सो रहे थे, क्योंकि हमने बताया सुबह का समय था, कृष्ण जल्दी नहीं उठते थे, तो उस समय सो रहे थे, लेकिन अचानक उनकी नींद खुल गई और फिर वो यशोदा की तरफ आने लगे। और यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ताम स्तन्य काम, स्तन्य काम अर्थात उनकी इच्छा हो गई, भगवान की इच्छा हुई कि मुझे यशोदा के स्तनों से दूध ग्रहण करना है। आचार्य समझाते हैं कि अगर इसी तरह जीव, हम सब भक्त, अगर बड़ा परिश्रम करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इतना परिश्रम कि स्वयं भगवान आतुर हो जाएं हमारे हृदय का रस पीने के लिए। यशोदा के स्तनों से दूध पीना चाहते थे, तो उसको अगर भक्ति की दृष्टि में देखें तो भक्त के हृदय का रस पीने के लिए आतुर हो जाते हैं कृष्ण। कब हो जाते हैं? जब उन्होंने देखा, हालांकि वो सो रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यशोदा बड़ा श्रम कर रही है, उसके मुख पर पसीने आ गए हैं, थक गई है। तो फिर ऐसे समय में उन्होंने, ऐसे भक्त के हृदय का रस पीने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं, उनके हृदय में इच्छा हो जाती है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये समझाते हैं कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे स्वयं भगवान हमें देखने के लिए आए। तो कब आएंगे? जब परिश्रम होगा, जैसे यहां यशोदा ने किया। और फिर कृष्ण उठकर आंखें मलते हुए, छोटे से बालक हैं, तो जैसे छोटे से बालक जब उठते हैं सो के तो रोते हैं आंखें मलते हुए, वो माँ के पास आ गए। और जब वो माँ के पास आए तो कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथनी पकड़ ली। तो कृष्ण ने देखा कि अरे अब मैं उठ गया हूँ, माँ को मुझे दूध पिलाना चाहिए, तो अब ये श्रम क्यों कर रही है? अर्थात भक्तों को वो सिखला रहे हैं कि जब आपके समक्ष भगवान हैं, प्रकट हो जाएं, तो फिर तपस्या करने की क्या, तपस्या करने का क्या लाभ है? नारद मुनि कहते हैं कि अगर भगवान श्री हरि आपके सामने नहीं है तो फिर तपस्या का क्या लाभ? अगर उद्देश्य आपकी तपस्या का श्री हरि नहीं है तो कोई लाभ नहीं, और अगर आपको श्री हरि मिल गए हैं तो फिर तपस्या का क्या लाभ है? तो इसी तरह कृष्ण जी समझाना चाह रहे थे कि अब मैं आ गया हूं तो अब ये मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं प्रसन्न हो गया हूं आपके श्रम से, तो अब आपको मेरी सेवा में लगना चाहिए, आपको मुझे स्तनपान कराना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने, वो जो माता दही मंथन कर रही थी, तो जो मथनी थी, वो डंडा होता है बहुत बड़ा, तो उसको पकड़ लिया। अब छोटा सा बालक है, माता में तो ज्यादा शक्ति है, तो फिर अगर उन्होंने पकड़ लिया तो ऐसा कैसे हुआ कि मथनी रुक गई? उन्हें यहाँ पर वर्णन है कि उन्होंने मथनी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तो ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने हाथ से मथनी को पकड़ा, तो मथनी तो लंबी है, उसको पकड़ लिया, तो यशोदा माता ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो उनके सारे कार्य उन्होंने छोड़ दिए, क्योंकि कृष्ण का मुख इतना सुंदर था, इतना आकर्षक था, कि सारे कार्य छोड़कर केवल कृष्ण को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। क्यों मुस्कुराने लगी? क्योंकि वो देख रही थी कि छोटा सा बालक प्रयास कर रहा है मथनी पकड़ने का, फिर उन्होंने भी रोक दिया, उन्होंने किया नहीं, आगे मंथन नहीं किया। फिर भगवान अपने आप ही थोड़ा सा ऊपर चढ़े, जो वहां पर एक छोटा सा स्थान था, फिर उसके ऊपर चढ़कर वो माँ से स्तनपान करने के लिए कहने लगे। फिर यशोदा ने उन्हें गले लगाया, अपनी गोद में बिठाया, और बड़े ही स्नेह से वो भगवान का मुंह देखने लगीं। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर गिर रहा है, तो वो बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गईं। तो यशोदा ने लिया, दूध पिलाने लगी। दरअसल जैसे ये लीला प्रारंभ हुई तो ऐसा हुआ था, क्योंकि कृष्ण इतने प्रसन्न हुए थे तो वो दूध पीने लगे, पीने लगे, पीते ही गए, काफी समय तक दूध पी रहे। अब जो चिन्मय जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां किसी चीज की कमी नहीं है, कोई चीज कम ज्यादा नहीं होती, शाश्वत चीजें। तो कृष्ण दूध पिए जा रहे थे और यशोदा माता का स्तन से दूध कम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि स्तन का दूध को आनंद आ रहा था कि कृष्ण मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, और कृष्ण को भी आनंद आ रहा था, तो वो काफी समय तक दूध पीते रहे। अब जब बहुत देर हो गई दूध पीते पीते, तो जो दूध पद्मगंधा गाय का दूध जो कढ़ाई में उबल रहा था, जिसको माता यशोदा उनको देने वाली थी, तो उसने सोचा कि अरे अरे अरे, अगर कृष्ण ने ये सारा दूध पी लिया, इतनी देर से, कई घंटों से पी रहे हैं, इतनी देर से वो पी रहे हैं, तो उनका पेट भर जाएगा, तो फिर मैं यहां जो तप कर रहा हूं, जो जल रहा हूं अग्नि में, उसका क्या लाभ होगा? मुझे तो कृष्ण पिएंगे नहीं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं है, मैं माता के सामने ही आत्महत्या कर देता हूं। सही है ना? कोई इस व्यक्ति सोच सकता है, अरे दूध कभी ऐसे सोचते हैं क्या? ये तो भक्तों की भावुकता है। नहीं, चिन्मय जगत है, सब कुछ आध्यात्मिक है, वहां हर चीज एक व्यक्ति है। तो इसलिए दूध ने ऐसा सोचा कि अरे ये केवल कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो अब जीवन बनाए रखना कठिन है, क्योंकि मैंने इतनी तपस्या की, अग्नि पर जला हूं, अग्नि पर रखा था ना यशोदा माता ने, तो अग्नि पर जलकर तप किया किस लिए? कृष्ण प्राप्ति हो, कृष्ण मुझे भोग करें, यह जीव का इच्छा होनी चाहिए। हमें भोगी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें भगवान के लिए भोग्य वस्तु बनना चाहिए कि भगवान हमारा भोग करें। शास्त्रों में बताया है कि एक ही पुरुष हैं, एक ही भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और बाकी सब प्रकृति हैं, और प्रकृति ये भोक्ता के लिए भोग्य वस्तु होती है। इसलिए हम सबको केवल भोग्य वस्तु बनना है। जैसे ये दूध जल रहा है, तप रहा है, किस लिए? कृष्ण मेरा भोग करे, बस। हमें तपस्या करनी चाहिए, इस जगत में जलना चाहिए, जलना, वैसे भी जल रहे हैं, जलने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें कोई बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं, वैसे ही जल रहे हैं इस जगत में। तपस्या करनी चाहिए, कष्ट करने चाहिए, किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। और कृष्ण की सेवा में जो बाधाएं आए, जो कष्ट आए, जो तपस्या हो, जो जलन हो, वो परम सुख है। भक्ति विनोद ठाकुर इसको बड़े सुंदर भजन में बतलाते हैं कि वही मेरे लिए परम सुख है। भक्ति मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, जो कष्ट आते हैं, जो दुख आते हैं, वो मेरे लिए परम सुख है। तो यहां देखिए, हम लोग अगर भगवान की लीलाओं के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करें तो हर क्षण से हम कुछ सीख सकते हैं। तो दूध उबल कर सोचने लगा कि मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्या लाभ है मेरे जीवन का? तो ये भक्त का भाव होना चाहिए कि अगर भगवान की सेवा नहीं कर सके तो जीवन को बनाए रखने का क्या लाभ। तो फिर ऐसे समय में जब ऐसा वो दूध सोच रहा था कि मैं अपने प्राण त्याग देता हूं, यहीं पर सामने माता के सामने ही प्राण त्याग दूंगा, तो फिर जैसे ही यशोदा माता ने देखा तो तुरंत उन्होंने कृष्ण को रख दिया एक तरफ और वो भागी दूध की ओर। तो अब जैसे ही वो दूध की ओर भागी, दूध को बड़ी शर्मिंदगी हो गई, उसको अपने ऊपर बड़ा शर्म आने लगी कि देखो मेरे कारण यशोदा माता की सेवा में बाधा आ गई। तो वो अपने आप नीचे चला गया, शर्म के कारण नीचे चला गया। यशोदा ने जाकर को पानी नहीं डाला, कभी कभी वो दूध जब ऊपर उबलने लगता है तो पानी डाला जाता है कि वो नीचे हो जाए, या उसको उतार कर रखा जाता है, कुछ नहीं किया यशोदा ने। जैसे ही दूध ने देखा कि अरे अरे मैं कितना पापी नीच हूं कि मेरी वजह से, मेरे इच्छा की वजह से यशोदा माता की सेवा में बाधा आ गई, वो अच्छी तरह कृष्ण की सेवा कर रही थी और उनको छोड़ना पड़ा, तो उसको बहुत शर्म आ गई, ग्लानी हो गई, पश्चाताप हुआ और वो अपने आप नीचे चला गया। शर्म के कारण सर झुका लिया उसने, शर्म के कारण। तो इस तरह से यशोदा माता भागी। लेकिन जब यशोदा माता गई तो कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी संतुष्ट नहीं हुआ था, तो कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए थे, इतना पी लिया था फिर भी संतुष्ट नहीं थे। अर्थात भगवान ने भक्त की सेवा स्वीकार की थी लेकिन संतुष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि और चाहते थे। कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं, भक्तों से सेवा लेते हैं, उन्हें आनंद आता है क्योंकि फिर वो भक्तों की सेवा करते हैं, ये आदान प्रदान है। भक्तों से सेवा लेना ये भी कृष्ण की कृपा है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कृष्ण भक्तों से सेवा ले रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण बड़े गलत कार्य कर रहे हैं, देखो सेवा लेते हैं। नहीं, वो केवल भक्तों को आनंद देने के लिए उनसे सेवा लेते हैं। तो इस तरह से बड़ा क्रोध आया कृष्ण को। और फिर यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन है कि अत्यधिक क्रुद्ध होकर अपने अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने जैसे आप लोग जानते हैं, कभी कभी छोटे बालक होते हैं, वो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो वो देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठे ही आंसू ले आते हैं आंखों में, नकली आंसू। रोते नहीं है, कोई दुख नहीं होता है हमें, लेकिन झूठे आंसू ले आते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि कोई उन्हें देखे। थोड़ी बात देर बाद देखते कोई नहीं देख रहा तो चुप हो जाते हैं कि क्या करें, कोई है ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कोई ध्यान दे दे तो और जोर से रोने लग जाते हैं। तो यहां भी कृष्ण बालक हैं, छोटे बालक, तो उन्होंने नकली आंसू। देखिए सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, पूरा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि कैसे लीला हो रही है। तो कहने लगे, नकली आंसू भर लिए आंखों में, कोई असली आंसू नहीं थे, झूठे आंसू। और इन नकली आंसुओं को भरकर कृष्ण ने मटकी फोड़ी। तो कहीं पर वर्णन है कि एक कंकड़ पड़ा था उससे फोड़ दिया, कहीं पर कहते हैं कि एक सिल होता है, हमें पता नहीं यहाँ की भाषा में उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, ऐसे उस पर चटनी वटनी बनाते हैं ना, सिल बट्टा, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ आप लोग समझ में आया क्या कह रहे हैं, ऐसा एक पत्थर होता है उसके ऊपर छोटे से पत्थर से, हाँ जो भी है आप समझ लो, उसको सिल बट्टा कहते हैं। तो वो पड़ा हुआ था, वो जो उसका, उसको शिलापुत्र कहते हैं, कभी कभी शिलापुत्र भी या बट्टा कहते हैं। तो वो छोटा सा पड़ा हुआ था, तो भगवान ने उसको ही उठाकर मारा। और बताते हैं कि इतनी दक्षता से मारा, क्योंकि भगवान सब चीज में एक्सपर्ट है, मटकी फोड़ने में भी एक्सपर्ट है एकदम, तो इतनी दक्षता से मारा कि केवल एक ही स्थान पर मटकी फूटी और जितना दही था सब बह गया। कितने एक्सपर्ट है देखिए, एक ही जगह पर थोड़ा सा छेद किया लेकिन सारी दही बाहर। तो भगवान को क्रोध क्यों आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ था, और एक मां का कर्तव्य है कि पहले पुत्र को स्तनपान कराए फिर दूसरे, और किस लिए भागी, ये थोड़े से दूध के लिए, क्या दूध नुकसान हो जाएगा, मैं कोई दूध से ज्यादा कम महत्वपूर्ण हूं, है कि नहीं, अरे दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। तो कृष्ण ने कहा, यह तो बहुत गलत है, कितने का होगा दूध, और दूध की कोई कमी है, 9 लाख गाय नंद महाराज के घर में, दूध की क्या कमी है, तो उस दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया कि यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, क्या है, मैं वैकुंठ छोड़कर यहां पर आया हूं, यहां पर आकर जमीन पर लीलाएं कर रहा हूं, किसके लिए, यशोदा को आनंद देने के लिए, और ये देखो यशोदा वो मुझे छोड़कर एक दूध के लिए, कितना नुकसान हो जाएगा भाई, चली भी गई। तो बड़ा क्रोध आ गया उनको, तो इसीलिए क्रोध में उन्होंने उसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद अब वहां पर खड़े थे तो वो खाने भी लगे, वहां पर बड़ा उनका सुंदर वर्णन है कि भगवान बड़े अच्छी तरह से माखन खा रहे हैं, है ना, तो भगवान छोड़ते नहीं हैं, माखन मटकी थोड़ी तो थोड़ा सा तो खा लिए, लेकिन अब सब जो दही गिर रही थी उस दही को वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे, अभी गिर गई सब, अब उन्हें जैसे ही सब गिर, अब तोड़ते समय तो कुछ ये नहीं हुआ हृदय में कि माता कुछ करेंगी, लेकिन अचानक फिर ये आ गया कि अरे ये मैंने क्या कार्य कर दिया। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, या तो यहाँ से भागना चाहिए, और अगर भागूंगा नहीं तो माता आके पकड़ लेंगी। तो उस समय वो वहां से भागने लगे, वो सोचने लगे, वो पहले देख रहे थे, खा भी रहे थे, और जब माखन खाने भागे तो जो दही उन्होंने गिराई थी, जैसे मटकी फोड़ी थी तो सारी दही गिर गई थी, तो जब भागने लगे तो उसी दही पर पांव रखकर भाग रहे। छोटे बच्चे ये भी नहीं पता कि अगर बचना है तो दही पर पांव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पता चल जाएगा कहाँ गए हैं। तो अब दही पर पांव रख के छाप 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 करते हुए भागे चले जा रहे हैं, छोटे छोटे पांव के निशान उनके बनते जा रहे हैं। तो करते करते एक स्थान पर गए, फिर वहां पर उखल था तो उसको उन्होंने उल्टा किया और उसके ऊपर खड़े होकर बड़े आराम से माखन खाने लगे, बंदरों को भी खिलाने लगे। और ऐसे जब वो कर रहे थे तो बड़े भयभीत होकर इधर उधर देख भी रहे थे,
दोनों काम एक साथ कर रहे थे, आंखों में झूठे आंसू भी थे, क्रोध भी था, लाल लाल भी हो रही थी आंखें, क्रोध भी था और भय भी था। भय क्यों था? गलती तो की है, अपराध तो किया है, तो भय भी था और झूठे आंसू भी थे, दुख भी दे रहे थे और क्रोध भी दिखा रहे थे, सब एक साथ। तो भय के कारण बार बार इधर उधर देख रहे थे, कहीं मां तो नहीं आ रही है, क्योंकि पता तो था गलती कर दी। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि यशोदा माता हाथ में छड़ी लेकर आ रही है। तो उस समय वो माखन खाते हुए उन्होंने थोड़ा टेढ़ा होकर देखा कि अरे यशोदा माता आ गई है, छड़ी लेकर आ रही है। तो पहली बार उन्होंने ये देखा था कि माँ के हाथ में छड़ी है। आज तक कभी यशोदा ने हाथ में छड़ी नहीं उठाई थी, कभी नहीं, जोर से डांटती भी नहीं थी यशोदा। लेकिन आज यशोदा ने देखा कि जब यशोदा आई वहां से वापस, तो उन्होंने देखा और वो मुस्कुराने लगी। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि यशोदा मुस्कुराने लगी। क्यों मुस्कुराने लगी? कि उन्होंने देखा कि देखो मेरा बेटा कितना सयाना हो गया, कितने अच्छी तरह से मटकी फोड़ी है उसने। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इसको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। तो ये बड़ा ही शैतान होता जा रहा है, आज यहाँ मटकी फोड़ी है, कल कुछ और करेगा, आगे चलकर किसी के घर में चोरी करेगा, फिर आगे चलकर और पता नहीं क्या क्या कार्य करेगा, जैसे आजकल के नव युवक और युवतियाँ करते हैं। तो यशोदा माता सोचने लगे भाई इतना सब उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए, तो थोड़ी सी तो उसको सजा होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने छड़ी हाथ में ले ली और छड़ी हाथ में लेकर फिर वो आने लगी। तो आज पहली बार कृष्ण ने यशोदा माता को छड़ी लेकर आते हुए देखा। तो अब तो कृष्ण ने कहा कि भाई अब तो नहीं हो सकता, आज तो मारे जाएंगे। तो कृष्ण ऊपर थे, उन्होंने एक उखल को उल्टा किया था। दरअसल उल्टा करने से क्या होता है, नीचे का भाग जो होता है वो चिकना होता है, उसके ऊपर आराम से खड़े हो सकते हैं। तो उल्टे उखल पर खड़े होकर खुद भी खा रहे थे, बंदरों को भी खिला रहे थे। तो अब कृष्ण को ये समझ में आ गया कि आज खैर नहीं है, आज तो कोई नहीं बचा सकता। यद विभेति स्वयं भयम्, जो भय भी उनसे घबराता है वो भय भयभीत हो गए। इसी का वर्णन कुंती महारानी कर रही हैं कि मैंने स्वयं देखा कि आप भयभीत थे, आप जिनसे भय कांपता है, साक्षात भय आपसे थर थर कांपता है, और आप भयभीत थे किससे? यशोदा की छड़ी से। तो फिर अब कृष्ण भागने लगे, उतरे और उछल कर एकदम भागे वो, कि किसी तरह वो आगे भागे, नहीं तो यशोदा तो छोड़ेगी नहीं। और फिर यशोदा ने भी आज तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ हो जाए इसको दंड देना चाहिए, क्योंकि अगर दंड नहीं देंगे तो फिर ये और आगे उत्पात करेगा, बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सिखाना चाहिए। तो यशोदा छड़ी लेकर भाग रही हैं पीछे पीछे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तुरंत ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्याधिक भयभीत हैं। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक पहुंच नहीं पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनके पीछे भागने लगी। तो अब यशोदा भाग रही हैं। अब यशोदा तो बड़ी है, कृष्ण छोटा सा है, 3 साल का बालक कितना भागेगा, कितनी तेज भाग लेगा। लेकिन कृष्ण बड़ी तेज भाग रहे थे, मगर फिर भी इतना अंतर रख रहे थे कि मानो यशोदा को लगता हो बस अभी पकड़ लूंगी, अभी पकड़ लूंगी, इतना अंतर बनाए हुए थे। ज्यादा आगे नहीं जा रहे थे, क्योंकि अगर बहुत आगे चले गए तो हो सकता है यशोदा छोड़ दे कि अब नहीं पकड़ा जाएगा। तो इतना ही अंतर रहता था कि यशोदा सोचती थी बस अभी हाथ में आया, अभी हाथ में आया, और फिर भागते रहते थे। तो ऐसे भागने लगे, उस कमरे से निकले, बाहर निकले, गली में निकले, आंगन में घूम रहे हैं, यशोदा भाग रही है। तो सारे ब्रज में हंगामा हो गया कि आज यशोदा छड़ी लेकर भाग रही है कृष्ण के पीछे। तो सारी गोपियां वहां पर आ गईं, सब लोग देख रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, और कृष्ण भाग रहे हैं, सारे ब्रज में हंगामा कर रहे हैं। और ऐसे भागते 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 काफी समय हो गया, कृष्ण भागते रहे, यशोदा भी बड़ा प्रयास कर रही है, यशोदा भी नहीं छोड़ रही है। ऐसा भी नहीं हो कि यशोदा कहें चलो थक कर छोड़ दें, क्योंकि यशोदा ने कहा आज छोड़ूंगी नहीं इसको, बड़े गुस्से में यशोदा। तो फिर उसके बाद जब कृष्ण ने देखा कि यशोदा माता बड़ा श्रम कर रही हैं। जैसे यहां पर वर्णन करते हैं कि कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी पड़ी, थक गई यशोदा माता। तेजी से पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। तो देखिए, माता भाग रही थी और जो फूल थे उनके बालों में वो गिरने लगे। अब क्यों गिरने लगे? फूल सोचने लगे। पहला कारण, फूल सोचने लगे आज ये यशोदा भक्ति का कार्य नहीं कर रही हैं, आज ये यशोदा को क्या हो गया है, ये मार रही हैं। अरे कृष्ण को छड़ी से मारने वाली हैं, हम इनका संग नहीं करेंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इसलिए हम अलग चले जाते हैं। तो पहले ही कूद गए। दूसरा, इस लीला को देखकर फूल सोचने लगे कि कितनी भाग्यवान है यशोदा कि देखो आज जिस पर ब्रह्म को पकड़ने के लिए या उनको पाने के लिए, उनको समझने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं जीव को, तपस्या करते हैं लोग, अपने मन में अपने ध्यान में उनको लाने का प्रयास करते हैं, उनको पकड़ने के लिए भाग रही। और कौन है कृष्ण, कैसे वो पकड़े जाएंगे, कैसे बंधे जाएंगे? वो कृष्ण जो बाकी सबको बंधन में बांधते हैं, कैसे यशोदा माता उनको बांधने वाली हैं? इसको देख देख कर उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि यशोदा की चरण धूलि अपने सर पे लगानी चाहिए, इसीलिए वो नीचे गिर गए। और उन्होंने कहा कि ये सही भक्ति है। तो इस तरह से यशोदा भागने लगी, अपने पुत्र को पकड़ने में सफल नहीं हुई, सॉरी सफल हो गई, वो थोड़ा भाग रही थी, बहुत प्रयास कर रही थी। और फिर जब कृष्ण ने देखा कि किस तरह से माता बहुत प्रयास कर रही हैं, सुखदेव गोस्वामी इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि क्यों भगवान को बांधने के लिए यशोदा माता, आगे वर्णन करेंगे कि यशोदा माता का क्या देखा। कृष्ण ने देखा कि माता बहुत थक गई है, बड़ा प्रयास किया है मुझे पकड़ने का, तो अब मुझे ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। तो फिर कृष्ण पकड़ में आ गए। अब यशोदा ने पकड़ा तो भी कृष्ण रो रहे थे, लेकिन आंसू कैसे थे उनके? झूठे नकली आंसू थे, और निकले जा रहे थे, रो रहे थे, वो सोच रहे थे शायद मेरी आंखों के आंसू देखकर आज यशोदा छोड़ देगी, लेकिन यशोदा ने कहा नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी। यशोदा ने सोचा कि अगर इसे अभी छोड़ दिया तो भागकर शायद जंगल में चला जाएगा, फिर कुछ खाएगा नहीं खाएगा, क्या पता क्या होगा, तो इसलिए इसको बांध कर रख देना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा, कृष्ण को कहने लगी कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज बांध कर रख दूंगी, आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद, कोई खेल नहीं कुछ नहीं, और तो और माखन भी नहीं दूंगी आज से, बंदरों को खिलाते हो व्यर्थ करते हो तो माखन भी नहीं दूंगी। दरअसल जब कृष्ण दूसरे मटके से माखन खा रहे थे तो ये बतलाना चाहते थे माता को कि देखो आज मैं तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करूंगा, तुमने केवल एक दूध के लिए मुझे अलग रख दिया है, तो पहले तो मैंने मटका फोड़ा तो मटके का नुकसान हुआ, और उसके बाद फिर सारा दही गिरा दिया, और अब मैं ये जो बासी मक्खन है ये खाऊंगा, तो बासी मक्खन खाने से क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, वो अलग तकलीफ होगी, पैसा खर्चा होगा, तो कष्ट आज बहुत दूंगा। तो जब यशोदा ने पकड़ा तो उसने कहा आज से माखन ही बंद कर दूंगी, बाहर जाना बंद माखन बंद। अब तो कृष्ण और रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, कह रहे ये क्या हो गया, बाहर ही नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, माखन नहीं, तो फिर कैसे? तो यशोदा माता ने कहा सब बंद, और अब से मैं तुम्हें बांध कर रख दूंगी। फिर उन्होंने देखा कि एक उखल वहां पर पड़ा था। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, बताते हैं कि वो उखल नहीं था जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे, ये दूसरा ऐसे ही एक उखल पड़ा हुआ था। तो यशोदा माता ने सोचा इसको बांध देना चाहिए। क्यों सोचा? क्योंकि ये आदत होती है ग्वाल बालों की, जब हम लोग किसी बछड़े को पकड़ते हैं, गाय को पकड़ते हैं, बैल को पकड़ते हैं, तो फिर उसको कहीं पर एक पेड़ के वहां बांध देते हैं, है ना, रस्सी से, कि बांध देंगे यहीं पड़ा रहेगा, जब थोड़ी देर हो जाएगी फिर देखेंगे क्या करना। तो उसी भाव में उस यशोदा ने सोचा इसको यहां ये उखल पड़ा है इस पे बांध देते हैं, और इसी में बंधा रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा, तब इसको थोड़ा सी अक्कल आएगी, तब समझ में आएगा क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर यशोदा प्रयास करने लगी। यशोदा ने सोचा कि मुझे कृष्ण को बांधना चाहिए। ऐसे जब वो वर्णन कर रहे थे कि यशोदा बांधने वाली हैं, तो परीक्षित महाराज का जो मुख था वो थोड़ा सा बदल रहा था। सुखदेव गोस्वामी ने देखा। क्यों बदल रहा था? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अरे यशोदा माता को बांधना नहीं चाहिए कृष्ण को, ठीक है थोड़ा बहुत ये है, लेकिन बांध क्यों रही हैं? तो फिर उसके लिए बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कृतागसम, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कृतागसम का अर्थ होता है कि जिसने अपराध किया है, अपराधी है। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि परीक्षित महाराज को ऐसा लग रहा है कि इनको बांधना नहीं चाहिए था, तो सुखदेव गोस्वामी ने समझाया अरे अपराध किया है, अपराधी है, कृतागसम। तो फिर परीक्षित महाराज, हाँ अपराध तो किया है तो बांधना चाहिए था, ये सही बात है। तो फिर यशोदा माता उनको बांधने लगी। तो ऐसे बताते हैं कि पहले उन्होंने अपने सर पर जो हल्की सी रस्सी माताएं बांधती हैं बांधने के लिए, वो निकाली कि छोटा सा बालक है, कितनी कमर है उसकी, मुट्ठी भर की कमर है, 3 साल का बालक, कोमल बालक है, इसको बांधने के लिए कितनी रस्सी चाहिए। तो उन्होंने पहले वो रस्सी निकाली, एक छोर उसका उखल पर बांधा और फिर दूसरा छोर से लेकर कृष्ण की कमर पर आई। बस पूरा ही होने वाला था जहां गांठ लगानी है, तो देखा कि 2 उंगली छोटी पड़ गई रस्सी। यशोदा ने बड़ा प्रयास किया लेकिन आ नहीं रही थी। तो यशोदा ने छोड़ा नहीं, उसने प्रण लिया था कि आज बांध कर रहूंगी। तो यशोदा ने अपनी दासी को आवाज दी कि जरा दूसरी रस्सी ले आओ। तो वो रस्सी ले आई, यशोदा ने गांठ मारी, केवल 2 उंगली छोटी थी पहले और रस्सी काफी बड़ी आई। फिर उसने गांठ मारी, फिर बांधने का प्रयास किया तो फिर 2 उंगली छोटी। यशोदा ने कहा गाय को बांधने वाली रस्सी ले आओ, गोकंठ पाशेन निबध्यमानम। तो गाय को बांधने वाली रस्सी लेकर आई और फिर भी 2 उंगली छोटी। अब तो सारे ब्रज में हंगामा हो गया और सारी गोपियां वो यशोदा को कहने लगी कि यशोदा तुम्हारे बालक के कपाल पे, यानी उसके भविष्य में, उसके माथे पर बंधना लिखा नहीं है, तो तुम प्रयास मत करो, क्यों बेकार में लगी हुई हो। लेकिन यशोदा ने कहा आज नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। अब आप सोचिए, यशोदा माता रस्सियां बांधे जा रही हैं, 2 उंगली छोटी थी, तो क्या यशोदा माता को ये नहीं आया अरे क्या हो रहा है, भ्रम में क्यों नहीं पड़ी यशोदा माता? कोई हो सकता है ना, स्वाभाविक, अगर हम लोग एक बार करने, चलो एक बार नहीं दूसरी बार हम भी सोचेंगे अरे 2 उंगली छोटी थी, इतनी लंबी रस्सी बांधी है फिर भी 2 उंगली छोटी, कमर तो बड़ी नहीं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की कमर बढ़ती जा रही थी, कमर का कमरा हो रहा था, ऐसा तो नहीं था। कृष्ण तो वही थे, उतनी ही छोटी सी कमर थी, मुट्ठी के बराबर, वर्णन है ऐसा शास्त्र, मुट्ठी के बराबर है, मुष्टिक प्रमाण है, मुष्टिक यानी मुट्ठी के बराबर उनकी कमर है, इतनी सी कमर और इतनी सारी रस्सियां, और सारी गोपियां हंस रही हैं, आनंद ले रही हैं, सब खड़ी हैं देख रही हैं, लेकिन यशोदा के माथे पर पसीना आ रहा है। यशोदा नहीं, और रस्सियां लेकर आओ। फिर सारी गोपियां रस्सियां लाने लगी, एक एक गोपी लाकर रस्सी देने लगी, फिर यशोदा बांधती हैं, फिर वही छोटी, 2 उंगली छोटी। तो बड़ा प्रयास करते हैं। ऐसा एक्चुअली आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो ये सोचने लगी कि अरे ये यशोदा क्या कर रही है, किसको बांध रही है, पर ब्रह्म कृष्ण। तो उन्होंने कहा हम इसको बंधने नहीं देंगे। अरे भाई हम शक्तियां हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं भगवान के प्रति। तो जो भगवान की शक्तियां हैं उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी, शक्तियों ने शक्ति लगा दी कि आज कुछ भी हो हम इन्हें बंधने नहीं देंगे। और यशोदा ने अपनी भक्ति की शक्ति, अपनी प्रेम की शक्ति लगा दी कि आज कुछ भी हो मैं इन्हें बांध कर रहूंगी। तो ये बड़ी सुंदर प्रतियोगिता चल रही है भगवान की अन्य शक्तियों में, जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, और फिर यहां यशोदा माता के प्रेम में, और वो बड़ा प्रयास कर रही है कुछ भी हो ये परब्रह्म है। सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि किनको बांधने का प्रयास कर रही है यशोदा माता। वो कहते हैं न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम ना पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगश्चय। बहुत सुंदर वर्णन है। वो बोलते हैं किसको किसको बांध रहे हैं, न च अंतर, जिनका कोई अंदर नहीं है, भीतरी नहीं है, और ना बहिर ना ही कोई बाहर है, बांधेंगे किसको, ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर है, कुछ है ही नहीं तो किसको बांधेंगे। भगवान का ना आदि है ना अंत है, तो कहां पे बांध, अभी किसी का आदि अंत हो तो बांध सकते हैं ना, इनका तो कोई आदि ही नहीं है ना कोई अंत है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, तो बताते हैं कि ना उनके आगे है ना पूर्वम न चापरम, ना पीछे है ना आगे है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना अंदर है ना बाहर है, किसको बांध रही है। बड़ा सुंदर वर्णन है सुखदेव गोस्वामी यहां कह रहे हैं, वो भगवान की स्थिति को बतला रहे हैं कि किस भगवान को, किस पर ब्रह्म को बांधने का प्रयास यशोदा माता कर रही है। वो कहते हैं अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, कोई अंत नहीं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, उस पर ब्रह्म को बांधने का प्रयास, और वो भी जगत के जो स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं, काल के वशीभूत नहीं हैं, उनको वो बांधने का प्रयास कर रही हैं। गोपिको लू खेल दामना बबंद प्राकृतम यथा, कैसे बांधने का प्रयास कर रही हैं, जैसे सामान्य बालक करते, सामान्य बालक को बांधा जाता है, तो उस उन बालक को कर रही हैं। यहाँ शक्तियों में प्रतियोगिता चल रही है, भगवान की बाकी सारी शक्तियां और यहां पर कृष्ण, यहां पर यशोदा माता का प्रयास। तो फिर ऐसे जब प्रयास चलता रहा, यशोदा माता ने छोड़ा नहीं, रस्सियां खत्म हो गई, रस्सियां लाए सारे ब्रज की रस्सियां आ गई, लेकिन फिर भी दो उंगली कम। तो फिर कृष्ण ने देखा और फिर कृष्ण के अंदर बाकी जितनी शक्तियां थी उन शक्तियों को कम करने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति वो उदित हुई। और कौन सी शक्ति है वो? हाँ नहीं, करुणा, भगवान की कृपा। हमने आपको पिछली बार बतलाया था कि भगवान का शरीर किससे बना है, करुणा से, कृपा से, केवल वही है। तो जब भगवान ने देखा कि इतना परिश्रम हो गया है, यशोदा माता ने इतना परिश्रम किया, तब फिर वो कृपा उदित हुई। और जब कृपा उदित हुई तो बाकी सारी शक्तियां धाराशाही समाप्त, क्योंकि ये सबसे बड़ी शक्ति है। तो फिर आचार्य समझाते हैं कि ये दो चीजें हमें चाहिए कृष्ण को बांधने के लिए, एक हमारा प्रयास जो यशोदा माता ने किया, उन्होंने छोड़ा नहीं, सारे लोग कह रहे थे, गोपियां कह रही थी तुम्हारे बालक के कपाल पर लिखा नहीं है बंधना मत बांधो, और रस्सियां छोटी पड़ रही हैं। और एक प्रश्न आता है कि जब ये सब हो रहा था तो रोहिणी देवी ने क्यों नहीं रोका, रोहिणी देवी रोक सकती थी ना, कृष्ण को बांध रहे, अरे आके बोल सी चलो छोड़ दो, बलराम जी कुछ करते, कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया कोई बता सकते हैं? रोहिणी देवी दरअसल वहां नहीं थी, रोहिणी देवी बलराम जी को लेकर उपनंद जी के यहां गई थी और वहां पर दिवाली की जो तैयारियां हैं उसकी देखरेख वो कर रही थी, बाद में आई थी लेकिन उस समय नहीं थी, क्योंकि अगर उस समय होती तो शायद रोक देती, इसीलिए कृष्ण ने पहले ही व्यवस्था कर दी कि आप बाहर जाइए, मुझे बंधना है, मेरी इच्छा है, मैं बंधना चाहता हूं। भगवान ने सोचा कि मैं सबको बांधता हूं, मैं सबको पकड़ के रखता हूं, मुझे भी तो कोई पकड़ने वाला होना चाहिए, मुझे भी तो कोई बांधना चाहिए, मुझे भी तो वो रस चाहिए कि मैं देखूं कि बंधने में कितना आनंद आता है, तो मुझे कौन बांधेगा, कौन बांध सकता है भगवान को, केवल भक्त। तो इसीलिए भगवान ने इच्छा की थी, वो चाहते थे कि मैं बंधूं और उस आनंद का स्वाद लूं जो बंधने में, जो मां के द्वारा पकड़ने में आता है। लेकिन इस समय बड़े भयभीत थे, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो कोई नाटक कर रहे थे, वो सही में भयभीत थे, अरे मारेगी क्या करेगी, दंडा हाथ में लेकर छड़ी हाथ में है, बड़े भयभीत थे। और उनके भय को देखकर यशोदा ने छड़ी फेंक दी कि बालक जरा ज्यादा ही भयभीत हो गया है, कुछ हो नहीं जाए तो छड़ी फेंक देती हूं लेकिन बांध दूंगी। तो फिर सारी रस्सियां आई, बांध नहीं पाई, और फिर जब भगवान ने देखा कि यशोदा माता का प्रयास बहुत सफल है तो अपनी कृपा उन्होंने दी, और फिर इसके कारण वो कृष्ण को बांध पाई। तो इस तरह से उन्होंने कृष्ण को रस्सी में बांधा, उन कृष्ण को जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े शास्त्रों के विद्वानों के भी पकड़ में नहीं आते, उन्हें एक साधारण सी गोपी ने पकड़कर बांध दिया। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर ये वर्णन करते हैं एक ही श्लोक में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल, कृपा और प्रयास का इस्तेमाल सुखदेव गोस्वामी ने किया है। वो कहते हैं, स्वमातु स्विन गात्राय विस्रत कब्र कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत्व बंधने। दृष्ट्वा परिश्रमं, परिश्रम को देखकर कृपया सीत्व बंधने, उन्होंने कृपा की और फिर वो बंधने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हे महाराज परीक्षित, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्च देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में रहते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। तो देखिए कृष्ण क्या दिखला रहे हैं इस लीला में, कि सारा ब्रह्मांड मेरे वश में है, बड़े बड़े देवी देवता मेरे वश में हैं, ये समुद्र, ये पर्वत, ये प्रकृति, ये सारी जितने भी अन्य ब्रह्मांड हैं, जितने ग्रह हैं, ये सब मेरे वश में हैं, लेकिन मैं भक्तों के वश में हूं। मेरी सारी शक्तियां भक्तों की भक्ति और प्रेम के आगे विफल हो जाती हैं, मैं स्वयं बंध जाता हूं उनके प्रेम में। तो इस लीला को, इस लीला के द्वारा कृष्ण ये दिखला रहे हैं कि किस तरह से भगवान बंध जाते हैं प्रेम से। तो ऐसी सुंदर लीला, ऐसी अवस्था जो यशोदा माता ने प्राप्त की, ये कौन प्राप्त नहीं कर सकते, इसका वर्णन कर रहे हैं। ना तो ब्रह्मा, ना शिव, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती हैं जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। तो इस तरह की कृपा उन्हें मिली। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे जब भगवान को यशोदा माता ने बांध दिया उखल में, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया और नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार, और उसके द्वारा नारद मुनि हमें क्या शिक्षाएं देते हैं, और इस कौन से अनर्थ को ये प्रस्तुत करता है, और इस अनर्थ को कैसे हम अपने हृदय से निकाल सकते हैं, इसका हम लोग, इस विषय पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। तो किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है, कुछ पूछना चाहते हैं, लाइट्स जलाइएगा पीछे से। पकड़ लिया तब भयभीत हुए थे, पहले तो झूठे आंसू ही बहा रहे थे, लेकिन जब बच्चा फिर भी भयभीत होता है, वो जानता है माँ कुछ करेगी नहीं, माँ से प्रेम है, माँ को भी प्रेम है, लेकिन फिर भी भय तो हो जाता है ना कि अरे छड़ी लेकर, आज पहली बार माता को उन्होंने छड़ी लेकर देखा था, आज तक छड़ी लेकर नहीं देखा, इतने गुस्से में नहीं देखा था, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि अब तुम्हारा माखन भी बंद और बाहर जाना भी बंद। तो फिर भगवान घबराना ही था कि अरे ये तो बहुत गंभीर बात हो गई, अभी तक तो मैं इसको बहुत आराम से ले रहा था, कि ये तो गंभीर बात है, इसीलिए भयभीत हो गए थे। और कोई प्रश्न है?
क्या उखल ने भी अपने आप को भाग्यशाली समझा होगा, बजाय भगवान उखल के बंधे, ये उखल ने भी सोचा कि मैं भगवान से बंध गया।
हाँ सोचा, लेकिन यशोदा ने उखल से क्यों बांधा, क्योंकि यशोदा ने ये सोचा कि भगवान खड़े हुए थे उखल के ऊपर, तो ये उखल भी अपराधी है, तो इसको भी बांध देती हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दंड तो इसको भी मिलना चाहिए, कृष्ण ने तो किया ठीक है, उसको तो दंड दे रहे, लेकिन ये उखल भी दंड का भागी है, क्योंकि इसी ने कृष्ण को प्रेरित किया होगा खड़े हो जाओ ऊपर, तो फिर इसलिए उसको भी दंड दिया, तो वो भी चिन्मय है। और कोई प्रश्न? खुदा ने जब उखल को देखा तो उन्होंने, क्योंकि क्या हुआ था कि जब उखल से उतरकर भागे थे तो बहुत भागे थे, वो कहाँ कहाँ गए थे, बहुत जगह जगह अलग अलग जगह घूम रहे थे, कभी आंगन में जाते, कभी गली में घुस जाते, कभी इस कमरे में घुस जाते, और यशोदा बेचारी भाग रही थी पीछे। तो सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि वो उखल पड़ा था दूसरा, लेकिन उखल को देखते ही यशोदा को वही स्मरण आया कि ये उखल की भी गलती है, इसको भी बांधना चाहिए। तो फिर उन्होंने, और दूसरा ये था कि वहीं पड़ा था तो तुरंत बांध दिया उन्होंने। और कोई प्रश्न?
आज इतने वर्ष बीत गए भगवान को अवतरित हुए, हाँ जी, आज भी इन लीलाओं का सुनने में उतना ही आनंद क्यों आता?
पहला का लीलाएं हैं और हम सबका संबंध भगवान से है, ये इस बात का प्रमाण है। अगर हमारा संबंध नहीं होता तो हमें आनंद नहीं आता। जैसे आपको अगर आकर कोई आपके दादाजी की बातें सुनाए कि आपके दादाजी इतने महान थे, ऐसे कार्य करते थे, तो आपको थोड़ा आनंद आएगा क्योंकि आपसे संबंधित हैं। अगर कोई आकर बताए कि वो आपके पड़ोस में रहने वाले के पड़ोसी है एक जो बंबई में रहता है, उसके दादाजी ने ऐसा किया, ठीक है, होगा, क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारे कोई कहे आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने अपने समय में इतना महान कार्य किया, तो हमें थोड़ा लगता है हाँ हमारे दादाजी ने किया, क्यों? क्योंकि हमारा संबंध उनसे स्थापित होता है। इसी तरह हर जीव का संबंध कृष्ण से है, तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण है कि हमें कृष्ण की लीलाएं अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमें जब वो हमें स्मरण आता है, जब हम सुनते हैं, तो वही आनंद आता है जो आनंद हमें उनकी सेवा करने में आता था। जब हम उनकी सेवा कर रहे थे तो जब उस समय हमें वो आनंद आ रहा था, वही आनंद हमें अभी केवल उस सुनने में आ रहा है। क्योंकि ये जो भी कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, आध्यात्मिक जगत की लीलाएं, ये आत्मा को आनंद देती है, ये शरीर को कोई आनंद नहीं देती है। शरीर को क्या है, अभी हमने अगर हम ये जो सारी लीला वर्णन की, इसका सार वर्णन करें तो क्या किया है? कुछ नहीं, एक बच्चे ने मटकी फोड़ी और मक्खन खाया, उसकी माँ पीछे भागी, पकड़ लिया। अब इसमें क्या आनंद है? कोई आनंद है? कितना बार होता होगा यहाँ पर घर में कोई चीज फोड़ देता है, बच्चा भागता है, क्या है उसमें? लेकिन क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित थी और उसने सीधे हमारी जो आत्मा है उसको आनंद दिया, आत्मा ने ये जाना कि हाँ ये जो वर्णन हो रहा है ये एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जिसका संबंध है मुझसे, तो इसलिए ये आनंद, ये दिव्य आनंद हम लोगों को होता है सुनने में बार बार। और कोई प्रश्न? आप लोग सब बेलगाम वापस आ जाइए, घर जाना है आप लोगों को। तो कल, वैसे भक्त थोड़ा देर से आ रहे हैं जिस कारण से समय पर शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आज भी काफी समय। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण।